الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا इस क्लास में हम सूरह मायदा की तफसीर पढ़ते हैं। मारिफ़ कुरान जिल्द नंबर 3 हमारी रेफरेंस बुक है या कोर्स की बुक है, और इसमें जो हमने अभी आयात तिलावत की ये आयात नंबर 15 से लेकर के 18 तक हैं सूरह मायदा की। और पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने तर्जुमा मुकम्मल कर लिया था और खुलासा तफसीर शुरू कर लिया था। खुलासा तफसीर में तर्जुमा एक बार रिपीट भी हो जाता है और ब्रैकेट्स के अंदर जो तफसीर मौजूद है वो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बयानुल कुरान से मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर नकल फरमाई है। तो खुलासे तफसीर हम जरा एक दफा फिर से शुरू से पढ़ लेते हैं कि ए अहले किताब यानी यहूद व नसारा तुम्हारे पास। अच्छा नहीं, शुरू से नहीं पढ़ते हैं इसलिए कि मेरे ध्यान में था कि हमने सिर्फ शुरू की 5 लाइनें पढ़ी थी, लेकिन नहीं, हम आगे भी पढ़ चुके थे। तो पेज नंबर 86 के ऊपर फोर्थ लास्ट लाइन जो बनती है, जिनके पास किताब का प्रिंट आउट है या किताब मौजूद है तो वो फोर्थ लास्ट लाइन बनती है पेज नंबर 86 86 के ऊपर। और जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो स्क्रीन पर खुलासा तफसीर जो है वो डिस्प्लेड है। तो उसमें कौन सा वाला पेज नंबर बनेगा कि इससे अकीदा मसीह का बातिल हो गया। यहां तक हमने पढ़ा था। तो ये स्क्रीन के ऊपर कौन सा वाला पेज है? अच्छा, स्क्रीन पे कौन सा पेज बनता है मुझे आप बता सकते? एक मिनट, लेकिन मैं आपकी स्क्रीन नहीं देख रहा, अपनी स्क्रीन देख रहा हूँ। वकालत अल यहूद व नसारा नहनु अबनाउल्लाह, तो मिसल नसारा के है। ठीक है, बस चले हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो जो आपके सामने स्क्रीन स्प्रेड है तो उससे ही हम पढ़ते हैं कि और यहूद व नसारा दोनों फरीक दावा करते हैं। नहीं, ये इससे पीछे वाला पेज, ठीक है, इससे पीछे वाला पेज वो बनेगा। तो आप जरा अपना जो स्क्रीन डिस्प्ले करें एडमिन साहब, वो पीछे वाला पेज लेकर के आ जाए। ठीक है, तो उसमें लिखा था कि बिलाशुबा वो लोग काफिर हैं जो यूं कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐन मसीह बिन मरियम। ठीक है, यानी अल्लाह ताला और मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो एक ही है, नऊज़ुबिल्लाह। ठीक है, तो वो लोग बिलाशुबा काफिर हैं। क्या मतलब काफिर हैं? कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो बतलाया ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसका इनकार करते। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, तो उस बात का इनकार करने वाला फिर वो काफिर कहलाता है। ठीक है, ये अल्लाह का इनकार तो नहीं कर रहे हैं ना, ना ये ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का इनकार कर रहे हैं। ये किस बात का इनकार कर रहे हैं? ये नबी अलैहिस्सलाम की बात का इनकार कर रहे हैं। और काफिर यही होता है जो नबी अलैहिस्सलाम की बात का इनकार करे। ठीक है, तो बिलाशुबा वो लोग काफिर हैं जो यूं कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐन मसीह इब्ने मरियम है। आप इनसे यूं पूछिए कि अगर ऐसा है तो बतलाओ कि अगर अल्लाह ताला मसीह बिन मरियम, जिनको तुम अल्लाह का ऐन समझते हो, यानी ऐन अल्लाह ही समझते हो तुम, और उनकी औलाद, और उनकी औलाद हजरत मरियम को मसीह बिन मरियम और उनकी वालिदा, औलाद नहीं उनकी वालिदा, यार ये तो बिल्कुल कंफ्यूजन हो गई ना, उधर कुछ डिस्प्ले हुआ हुआ है इधर कुछ, हाँ और उनकी वालिदा, यहाँ पे गलत टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है, औलाद की जगह ना यहाँ पे लफ्ज आएगा वालिदा, और उनकी वालिदा हजरत मरियम को और जितने जमीन में आबाद हैं उन सबको मौत से हलाक करना चाहिए, उन सबके ऊपर मौत तारी करना चाहिए। तो क्या कोई शख्स ऐसा है कि जो खुदा तआला से जरा भी उनको बचा सके? यानी इतनी बात को तो तुम भी मानते हो कि उनको हलाक करना अल्लाह की कुदरत में है। ठीक है, अब ये म्यूचुअली एग्रीड अपॉन प्रिंसिपल है मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान कि अल्लाह ताला जो है ना वो हलाक कर सकता है, सबको सबको हलाक कर सकता है, और ईसा अलैहि सलाम को भी हलाक कर सकता है। और क्योंकि अब ये कंफ्यूजन है ना सारी की सारी ईसाइयत के अंदर, तो ये गॉड और सन और होली घोस्ट और मरियम मैरी राइट, ये सब जो है वो एक एक मशक्कल इन्होंने बनाया हुआ है। तो करते हैं इस बात के ऊपर कि अच्छा जी हलाक तो कर सकता है, तो यानी तुम भी इस बात को मानते हो कि उनका हलाक अल्लाह की कुदरत में है? तो भाई जिस जात का हलाक करना किसी दूसरे के कब्जे में हो वो खुदा कैसे हो सकता है? ठीक है, हम तो नहीं मानते भाई, तुम मानते होगे तो मानो, तुम्हारी मर्जी है, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर सकते अपना अकीदा चेंज करने के ऊपर। ठीक है, ला इकराह फिद दीन का मतलब क्या होता है कि किसी को उसका अकीदा उसका नजरिया चेंज करने के ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम तुम्हें फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम तो हरगिज हरगिज किसी ऐसी चीज को खुदा मानने के लिए तैयार नहीं है जिसको कोई दूसरा हलाक कर सकता। ठीक है, तो वो खुदा कैसे हो सकता है? हमारे नजीक तो नहीं हो सकता। तो इससे अकीदाए उलूहियत मसीह का बातिल हो गया, यानी ईसा अलैहि सलाम जिनका दूसरा नाम मसीह भी है तो उनका इलाह होने का अकीदा बातिल हो गया। और जो हकीकतन खुदा और सबका माबूद है यानी अल्लाह ताला, ठीक है, हकीकत में तो अल्लाह ही सबका माबूद है, यानी सब अल्लाह ही की इबादत करते हैं, तो उसकी ये शान है कि उस ही के लिए खास है हुकूमत आसमानों पर और जमीन पर और जितनी चीजें उन दोनों के दरमियान हैं उन पर, और वो जिस चीज को जिस तरह चाहे पैदा कर दें। ठीक है, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं? लकद कफर अल्लदीना, बिलाशुबा वो लोग काफिर हो गए, कालू जिन्होंने कहा, अल्लदीना का मतलब जिन्होंने, कालू उन्होंने कहा, इन अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, कुल कह दीजिए इनसे, फमन यमलिकु मिन अल्लाह शैअन इन अराद अन युहलिक अल मसीह इब्न मरियम व उम्मुहु व मन फिल अर्ज जमीअन जमीअन, ठीक है, वलिल्लाहि मुल्कु السماوات والارض وما بينهما, और अल्लाह ही के लिए है आसमान और जमीन की मिल्कियत और जो कुछ उनके दरमियान में है यानी उनके अंदर मौजूद है। दरमियान का मतलब ये नहीं कि ऊपर और नीचे के ऊपर इख्तियार नहीं है, बल्कि दरमियान के ऊपर इख्तियार है, बल्कि सब कुछ अल्लाह ताला की मिल्क के अंदर ही है। यखलुकु मा यशाउ, वो तख्लीक करता है जैसे वो चाहता है, उसने तख्लीक किया, वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर, वो हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है। फिर उसके बाद अगले पेज पे आप आ गए होंगे, मैं तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ। वकालत यहूद वन नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, ठीक है, तो उसके तहत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह उन्होंने तर्जुमा क्या किया, और यहूद व नसारा यानी दोनों फरीक दावा करते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं। ठीक है, मतलब ये मालूम होता है कि हम चूंकि अंबिया की औलाद हैं इसलिए अल्लाह ताला के यहाँ हमारी एक खसूसियत है कि हम गुनाह भी करें तो उस पर इतनी नाराजी नहीं होती जितनी दूसरों पर होती है। ठीक ठीक है, क्योंकि दूसरी जगह पे अल्लाह, ये जो आगे खैर आयत नकल भी करी है, तो कहते थे कि भाई हम गुनाह भी करेंगे ना, अल्लाह के हुक्म को तोड़ेंगे भी, तो बस थोड़ा सा हमें पनिशमेंट होगी। यहां पर भी वो एग्री करते थे कि उनको पनिशमेंट होगी, ठीक है, तो यहां पर भी पकड़े गए। अल्लाह ताला ने ब्लंडर्स करवाए ना इनसे। पहला ब्लंडर क्या, यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो इस बात को एग्री कर गए कि हाँ यार, ईसा और मरियम को तो अल्लाह ताला हलाक कर सकता है, पकड़ गए इधर ही, ब्लंडर करवा दिया अल्लाह ताला ने इनसे, ठीक है। अब इनकी पोजीशन बिल्कुल वीक हो गई, अब ये आर्ग्यूमेंट को स्टैंड नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ऐसे जो है ना वो ब्लंडर्स करवाते हैं। और दूसरा ब्लंडर इनसे क्या करवाया, ठीक है, यानी अपने आर्ग्यूमेंटेशन में ब्लंडर क्या करवाया कि अदाब थोड़ा सा मिलेगा बस हमें, ठीक है, ये भी इन्होंने एग्री कर लिया कि अदाब थोड़ा सा मिलेगा, इधर भी फंस गए गए, ठीक है। तो ये जो कहते थे ना कि हम अल्लाह के बेटे और उसके महबूब हैं, इसका मतलब इनका ये नहीं था कि हम हकीकतन नाउज बिल्ला अल्लाह के बेटे हैं, बल्कि वो तो हुजैर अलैहिस्सलाम को यहूदी कहते थे और ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई कहते थे कि वो अल्लाह के बेटे हैं। ये कोई थोड़ी कि सारे ईसाई अल्लाह के बेटे हैं। तो मफहूम इसका क्या था कि हम स्पेशल लोग, हम तो अल्लाह के नबियों के बेटे हैं, ठीक है, तो इस वजह से कि हम गुनाह भी करें, इस वजह से हम गुनाह भी करें तो इस पर इतनी नाराजी नहीं होती, नाराजगी नहीं होती जितनी दूसरों पर होती है। जैसे बाप को अपने बेटे की नाफरमानी पर इतना असर नहीं होता जितना किसी गैर आदमी के ऐसे ही फेल पर होता है, ठीक है, यानी गुस्सा दूसरे पे ज्यादा आता है ना, तो अपने पे तो जो है वो गुस्सा कम आता है, ठीक है, यानी ये एक नऊज़ बिल्ला जिस तरह एक ना इंसाफ आदमी जो होता है ना, इंसाफ आदमी, उसका ये हाल होता है कि उसको अपने करीबी रिश्तेदार पे गुस्सा नहीं आता और दूसरा अगर गलत काम करे तो उस पर गुस्सा आता है, ठीक है। तो यहूद और नसारा की भी यही कैफियत अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, या इसकी तफसीर यही बनती है कि अपने पर तो गुस्सा कम आता है, दूसरे पर गुस्सा ज्यादा आता है, तो हम चूंकि अल्लाह के अपने हैं इस वजह से हम पे गुस्सा कम आएगा, कम गुस्सा आएगा, तो तुमने अल्लाह ताला को अपने ऊपर कयास करके रखा हुआ है। अलमरु यकीसु अला नफ्सिही, आदमी जो है ना वो अपने ऊपर दूसरों को भी कयास करता है, तो तुम बेइंसाफ हो तो अल्लाह भी तुम्हारी तरह बेइंसाफ है क्या कि अपने पे गुस्सा जो है वो नहीं करेगा या कम करेगा और दूसरे के ऊपर ज्यादा गुस्सा करेगा, ठीक है। तो अल्लाह के बारे में जो है ना वो ऐसा बदगुमान, अल्लाह के बारे में ऐसे गलत जो है ना वो तसव्वुरात रखने वाले जो हैं वो यहूदो नसारा थे, और जो उनकी इत्तबा करते हैं वो भी, फिर जाहिर सी बात है इत्तबा करने का मतलब ये कोई थोड़ी होता है कि सिर्फ आप अफआल में इत्तबा करें, बल्कि जब कोई किसी की इत्तबा करना शुरू करता है, किसी को फॉलो करना शुरू करता है, तो वो सिर्फ अफआल में इत्तबा नहीं करता बल्कि वो अकवाल में भी इत्तबा करता है और बल्कि वो अफकार में भी इत्तबा करता है, अफकार में भी इत्तबा करता है, ठीक है। तो इत्तबा जो होती है ना ये ऐसी कामिल किस्म की चीज है कि वो सिर्फ अफआल में नहीं होती बल्कि वो बढ़ के अकवाल में भी होती है और वो बढ़ करके अफकार में भी होती है, यानी फिक्रों में भी इत्तबा शुरू हो जाती है। इसी वजह से किसी गुनाहगार की या किसी काफिर की इत्तबा से कितना मना किया गया है कि तुम बजाहिर इसके अफआल में इत्तबा करोगे ना और समझोगे कि ये छोटी चीज है, नो, दिस विल लीड यू, दिस विल लीड यू टू डूइंग इत्तबा इन देयर अफकार एज वेल, उनकी सोचे भी तुम्हारी सोचे बन जाएंगी। और यही हमारे साथ हुआ है बहैसियत कौम कि हमने उनकी इत्तबा शुरू करी तो उनकी सोचे ही हमारी सोचें बन गईं, और जिस तरह वो अल्लाह के बारे में बदगुमानी करते उसी तरह हम भी अल्लाह के बारे में बदगुमानी करना शुरू हो गए, ठीक है। अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, कामिल इत्तबा पे तौबा करनी है, ये नहीं कि अफकार पे हम तौबा करते हैं लेकिन अकवाल पे तौबा नहीं करते और अफआल पे तौबा नहीं करते, बस एक पे तौबा करेंगे, नहीं, तौबा तो सब पे करनी पड़ेगी भाई। इत्तबा तो अल्लाह ताला का हुक्म है, फत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया, तुम इत्तबा करो उसके रास्ते की जो मेरी तरफ पलटने वाला है, मेरी तरफ लौटने वाला है, उसकी इत्तबा करो। जब हम किसी भी चीज में किसी ऐसे की इत्तबा करेंगे जो कि अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला नहीं है, तो क्या ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं होगी? ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं होगी। ठीक है, तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके हम किधर जाएंगे, क्या मिलेगा फिर हमें, कहाँ से हम जो है वो फायदे उठाएंगे, कहाँ से हम जो है वो कामयाबियां हासिल करेंगे। ठीक है, तो कामिल इत्तबा से तौबा करनी है, ठीक, कामिल इत्तबा से तौबा करनी है, या इत्तबा से कामिल तौबा करनी है कुफर और गुनाह के। ठीक है, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, अभी कर लें, उसके लिए लेट वेट करने की कोई जरूरत नहीं, क्लास खत्म होगी तब मैं तौबा करूंगा, नहीं, क्लास क्यों खत्म होगी, वहां जिंदगी खत्म होगी क्लास खत्म होने से पहले, तो फिर तौबा के बगैर दुनिया से चले जाएंगे। अभी इसी वक्त ऐ अल्लाह मेरी तौबा कि मैंने जो कुफार के अफआल में, अकवाल में और अफकार में इत्तबा की हुई है, ऐ अल्लाह मैं उस पर तौबा करता हूँ, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, अब तक जो मैंने किया है, अल्लाह आप मुझे अभी माफ फरमा दीजिए, इससे पहले कि मेरी जान निकल जाए, इससे पहले कि मैं सडन डेथ का शिकार होकर के उन लोगों की तरह जो हजारों की तादाद में पिछले चंद सालों में गए, मैं भी दुनिया से चला जाऊं सडन डेथ का शिकार होकर के, अल्लाह आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी तौबा करता हूँ आपसे। और वैसे भी रमजान का महीना आ रहा है, रमजान के महीने में तो तौबा करके ही दाखिल होना है, और कब्र में भी तौबा करके ही दाखिल होना है, ये नहीं कि रमजान में तौबा करके दाखिल होना है, कब्र में तौबा करके दाखिल नहीं होना, कब्र में क्यों बगैर तौबा के दाखिल होना है क्या, हरगिज नहीं। ठीक है, तो ये क्या लिखा आपने, इज द ऑपोजिट ट्रीटमेंट ओके, दैट इज वन गेट्स मोर अपसेट ऑन वन ओन किड्स मिस्टेक्स देन अदर्स, इज द ऑपोजिट ट्रीटमेंट ओके। हाँ, और ये तो सही, यही तो सही मुरब्बी का यही एटीट्यूड होता है ना, कि अपना अगर कोई गलत काम करता है तो वो ज्यादा अपसेट होता है, क्यों अपसेट होता है, क्योंकि वो उसका अपना है, वो उसका करीबी है, ठीक है ना, उसके साथ उसकी खसूसी नस्बत है, बाहर वालों के साथ उसकी उमूमी नस्बत है, अपने के साथ खसूसी नस्बत है, तो अपने के ऊपर तो ज्यादा अपसेट होने की और ज्यादा फिक्र करने की जरूरत होती है ना, लेकिन बेइंसाफ आदमी अपने पे गुस्सा नहीं होता बल्कि दूसरों पे ज्यादा गुस्सा होता है, दूसरों पर गुस्सा होता है अपने पर गुस्सा नहीं होता, ये बेइंसाफ इंसान होता है जिसको कि तरबियत वरबियत का कुछ नहीं पता होता, तो अल्लाह ताला को यही समझ के बैठे हुए थे। बहरहाल, तो मतलब ये मालूम होता है कि हम चूंकि अंबिया की औलाद हैं, इसलिए अल्लाह ताला की यहाँ हमारी ये खसूसियत है कि हम गुनाह भी करें तो उस पर इतनी नाराजगी नहीं होती जितनी दूसरों पर होती है, जैसे बाप को अपने बेटे की नाफरमानी पर इतना असर नहीं होता जितना किसी गैर आदमी के ऐसे ही फेल पर होता है, यानी नाइंसाफ बाप को ऐसा होता है। उनके इस ख्याल बातिल के इब्ताल के लिए, यानी नफी करने के लिए, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है कि आप उनसे पूछिए, ठीक है, कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, आप उनसे पूछिए कि अच्छा फिर तुमको तुम्हारे गुनाहों के अवज आखिरत में अजाब क्यों देंगे, ठीक है ना, देखें कैसे लॉजिक को यूज करते हुए नबी अलैहिस्सलाम सलाम को अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं कि आप इनसे पूछिए ना जरा, जिसके तुम भी कायल हो, जैसे कि यहूद का कौल था, अल्लाह ताला खुद यहूद के कौल को अपने कुरान मजीद में नकल फरमाते हैं, लन तमस्सना नारु इल्ला अय्याम मादूदा, ठीक है, यानी अगर हमें अजाबी जहन्नम हुआ भी ना तो बस चंद रोज ही के लिए होगा, जैसे अय्याम मादूदात, ये और किधर आया है अय्याम मादूदात, रमजान मुबारक के लिए, ठीक है ना, गिने चुने चंद दिन हैं ये रमजान मुबारक के, इनको मैक्सिमाइज कर लो, ठीक है, तो वही लफ्ज जो है वो यहूद भी उसी मानी में इस्तेमाल करते थे कि हमें बहुत थोड़े दिनों के लिए अजाब होगा, ठीक है, तो आप उनसे पूछिए कि क्यों भाई क्यों होगा, अगर तुम इतने लाडले हो, इतने जो है ना वो स्पेशल हो, तो तुम्हें क्यों अजाब होगा, चंद दिन के लिए भी क्यों होगा, यानी अगर हमें अच्छा, और खुद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का कौल भी कुरान मजीद में मजकूर है कि इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, यानी जिस शख्स ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देते हैं, ये भी कुरान मजीद ने नकल किया, ठीक है, अब हमें किसी ईसाई के पास जाकर के पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या वाकई ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे कहा था, हमारे कुरान में तो लिखा हुआ है, क्या वाकई ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे कहा था, अगर हम किसी ईसाई के पास जाके ये बात पूछेंगे ना तो फिर क्या होगा जी, या किसी यहूदी के पास जाके पूछेंगे कि क्या वाकई यहूदी ये बात कहा भी करते थे तो फिर क्या होगा, हम खुद काफिर हो जाएंगे, राइट, हम खुद काफिर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने कुरान मजीद को डाउट कर लिया,
शक शक जो है वो कुफर है। कुरान मजीद कुछ के ऊपर डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं कुरान मजीद में जो बात है ये वाकई सच है, क्या वाकई यहूदी ये बात कहा करते थे, क्या वाकई ईसाई ऐसी बात कहा गया, क्या वाकई ईसा अलैहि सलाम ने ऐसी बात कही थी जो कुरान मजीद में मौजूद है, तो फिर हमारा ईमान किधर गया, हम काफिर हो गए क्योंकि हमने नबी अलैहिस्सलाम की बात का इनकार कर दिया। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ईसाई से पूछने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ना यहूदी से पूछने की जरूरत है ना ईसाई से पूछने की जरूरत है, कुरान मजीद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 100%। ठीक है, इसके ऊपर एक और वाकया हदीस में था तो वो अपने अदब से सुना था, कयामत के दिन जो है ना वो कौमों को दूसरी कौमों के ऊपर गवाह बनाया जाएगा, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि तुम्हें सारी कौमों के ऊपर गवाह बनाया जाएगा, तो कि दूसरी कौमों ने ये किया, दूसरी कौमों ने ये किया, तो मुसलमानों को उन पर गवाह, मुसलमानों से गवाही ली जाएगी कि क्या ईसाइयों ने ऐसे किया, क्या यहूदियों ने ऐसा गलत काम किए, ये गवाही किससे ली जाएगी, मुसलमानों से ली जाएगी। तो अब उसकी तफसील ये है कि जब मुसलमानों से गवाही ली जाएगी ना कि क्या तुम गवाह गवाह गवाही देते हो कि ईसाइयों ने ऐसे किया, यहूदियों ने ऐसे किया, तो मुसलमान कहेंगे जी हम गवाही देते हैं कि ईसाइयों ने ऐसे किया, मुसलमानों ने ऐसे किया, ठीक है, अपने पैगंबरों के साथ ऐसे किया, माजी में ऐसे किया, तो फिर उस वक्त जो है ना ये ईसाई और यहूदी बोलेंगे ए अल्लाह आप इनसे गवाही क्यों ले रहे हैं, ये तो मौजूद ही नहीं थे वहां पर, इन्होंने तो हमें देखा ही नहीं ऐसी बातें करते हुए और ये बातें कहते हुए। तो अल्लाह ताला फिर मुसलमानों से पूछेंगे हाँ भाई तुमने तो देखा ही नहीं तो तुम कैसे गवाही दे रहे हो, गवाही तो वो देता है जो देखता है, तो मुसलमान जवाब देंगे ईमान वाले मुसलमान, ईमान वाले मुसलमान होंगे ना वो लोग, तो वो ये जवाब देंगे ए अल्लाह हमने अपने नबी अलैहिस्सलाम से बात सुनी थी, उसके बाद हमें देखने की जरूरत ही नहीं थी, हमें देख अपनी निगाहों से ज्यादा एतमाद नबी अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर था, राइट, और कुरान क्या है ये भी नबी अलैहिस्सलाम की बात किया ना, अजीब, मतलब हमें जाहिर है बिल्कुल इल्म विल्म हमें तो नहीं है ना अपने दीन का, तो इस वजह से हम कहते फिरते हैं हदीस की क्या, हदीस क्या है, ये तो सुनी सुनाई बात को हदीस कहते हैं, किसी ने हमसे पूछा चंद दिन पहले कि हदीस का क्या चक्कर है, ये तो सुनी सुनाई बात होता है हदीस का मतलब, तो हमने कहा कि फिर कुरान क्या चीज होती है भाई, कुरान क्या चीज होती है, पहली बात तो ये कि हदीस के लफ्ज का मतलब सुनी सुनाई बात है ही नहीं, लेकिन हम मज़ूम करके बैठे हुए कि सुनी सुनाई बात, राइट, हमने कहा भाई हदीस का मतलब ही ये नहीं है जो आप समझ के बैठे हुए, और दूसरी बात ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की बात है हदीस ना, तो कुरान क्या है, कुरान क्या आपको कहीं और से मिला है, कुरान मजीद जो है वो आपको टैबलेट की शक्ल में मिला था ऊपर से, या डिस्क की शक्ल में मिला था, या सीडी की फॉर्म में मिला था, है, या जो है वो पत्ते पे लिखा हुआ आया था, नबी अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से कुरान मिला है हमें और कहीं से नहीं मिला, ठीक है, और हदीस क्या है वो भी नबी अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से मिली हुई बात है, ठीक है, तो फर्क तो कुरान और हदीस क्या, हदीस कुरान मजीद भी हदीस ही है, कुरान मजीद भी हदीस ही है, ठीक है, तो हदीस तो ये होता है, ये हदीस को हम जो समझ बैठे हैं कि ये तो उसका कुछ पता नहीं है कि सच है कि गलत है, लेकिन कुरान का पता है कि सच है गलत है, भाई आपको कुछ पता ही नहीं है कि हदीस क्या, हमें खुद नहीं पता था, हम कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गए हमें कुछ ये सारी बातें नहीं पता थी, क्यों, इसलिए कि हम हमारे यहाँ तो सिस्टम ही ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हुआ है ना, इस वजह से मुसलमान होते हैं नमाज भी पढ़े होते हैं लेकिन ना कुरान का मतलब पता, ना हदीस का मतलब पता, ना ईमान का मतलब पता, ना कुफर का मतलब पता, ना इल्हाद का मतलब पता, ना दजल का मतलब पता, ना किसी चीज का मतलब पता, बस चल रहा है मामला, बस अल्लाह तवक्कुल पे भी नहीं, चीज को मुआवरा तो नहीं कह सकते अल्लाह तवक्कुल, लेकिन अल्लाह तवक्कुल पे भी मामला नहीं चल रहा होता, हमें इल्म हासिल करने की जरूरत है इन सब चीजों के बारे में ना, क्योंकि इनके ऊपर हमारा दीन डिपेंड करता है, उम्मीद है कि हम सब के सब यहाँ पर इसी नीयत से आकर के बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला हमारे आने को आप सबके आने को कबूल फरमाए, ठीक है, तो ये जो ईसा अलैहि सलाम ने ऐसे कहा तो हम कुरान से सीखते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने ये कहा था कि इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ठीक है, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं कि हदीस इज ऑल्सो कुरान मजीद, नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कुरान मजीद इज ऑल्सो हदीस, हदीस इज नॉट ऑल्सो कुरान मजीद बल्कि कुरान मजीद इज ऑल्सो हदीस, ठीक है, हदीस मुतवातर, कुरान मजीद क्या है, हदीस मुतवातर यानी हदीस की एक टाइप कैटेगरी जिसको हदीस मुतवातर कहते हैं, कुरान मजीद वो है, और कुरान मजीद के अलावा भी हदीस मुतवातर और भी हैं, ठीक है। अच्छा, यानी जिस शख्स ने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देते हैं जो बवजह इल्तिजाम के मिसल इकरार नसारा के है। ठीक है, तो अल्लाह ताला के साथ जिसने शरीक ठहराया तो जन्नत हराम है, लेकिन आज के जमाने में चूंकि हमें कुछ पता नहीं है, हमारी औलादों को भी कुछ पता नहीं है, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या बन गए, लेकिन कुछ पता नहीं, तो एक तो इल्म की कमी, और दूसरी बात ये कि जब इल्म किसी चीज के बारे में ना हो तो फिर उस चीज की अहमियत भी नहीं रहती। अहमियत दिल में होने के लिए उस चीज के बारे में मालूम होना पहले जरूरी है ना। आपको किसी चीज का पता ही कुछ नहीं तो क्यों आप उसको इंपॉर्टेंस देंगे भाई, क्यों उसको इंपॉर्टेंस देंगे? नहीं, उसकी अहमियत आपको पता ही नहीं, आपको उसकी जो है वो अपने लिए सिग्निफिकेंस नहीं पता, उसको उसकी जो है वो जो ग्रेटनेस है उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो आप उसको क्यों अहमियत देंगे? इसी वजह से, क्योंकि हमें ईमान के बारे में पता ही नहीं कि ये क्या चीज होती है, तो इस वजह से ईमान की अहमियत ही खत्म। तो इस वजह से आज के दौर में आपने सुना होगा, शायद हमने तो सुना अनफॉर्चुनेटली, कि कोई ईसाई मरता है तो उसको हम शहीद का दर्जा देते हैं, शहीद। कोई जो है वो उसको रहमतुल्लाह अलैह कह रहा होता है, राइट? कंफर्म पक्का ईसाई जिंदगी में भी था और मौत के वक्त कोई कोई चीज सामने नहीं आई कि जी उसने तौबा करी है, मुसलमान हो गया था, ठीक है, ईसाइयत की हालत में ही उसका इंतकाल हुआ, लेकिन उसके लिए रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। और कुछ जो है वो थोड़े से और जरा, तो वो RIP, पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये क्या चीज होती है भाई, फिर पता चला RIP का मतलब होता है रेस्ट इन पीस, ठीक है भाई। आपको ठीक है, हो सकता है मुसलमान हो गया हो, लेकिन आपको क्या जरूरत है ये सब बोलने की? आपको पता है कि वो मुसलमान हुआ, ठीक है, तो बोल ये नहीं रहे होते, इस नीयत से बोले तो फिर भी ठीक है कि मुसलमान हो के मरा था, इस वजह से मैं रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूं उसके बारे में। बल्कि ये बबांगे दहल ये आज की नस्ल कह रही है कि चाहे वो ईसाई मरा हो लेकिन फिर भी रहमतुल्लाह है, फिर भी रहमतुल्लाह है। तो फिर आप किस चीज की बुनियाद पे आपको जरूरत क्या है रहमतुल्लाह अलैह कहने की, जब आप खुद ही जो है मुसलमान नहीं है, तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह बोले या कुछ भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? कुरान मजीद का आपने इनकार कर दिया, राइट? तो अब आप खुद ही मुसलमान नहीं रहे, अब आप उसके लिए दुआएं देते रहे रहमतुल्लाह अलैह की, या रेस्ट इन पीस की, या फलाने की, या ढिमकाने की दुआएं देते रहे, आपकी अपनी मर्जी है भाई, जो भी चाहे करो, ठीक है। तो कुरान मजीद का तो हमें पता ही कोई नहीं, हमें तो बेसिक इस्तलाहात का नहीं पता, तो कुरान मजीद के अहकाम का क्या पता होगा, कुरान मजीद के प्रिंसिपल का क्या पता चला होगा, क्या क्या पता होगा हमें, ठीक है। तो क्या है फिर भाई अकबर इलाहाबादी का, सुना है कि जन्नत की बोली होगी अरब की, मगर हमने सीखी है इंग्लिश गजब की। तो इंग्लिश और इंग्लिश के सारे मजामीन तो हमने गजब के सीखे हैं, लेकिन कुरान का तो हमें अरबी भी नहीं पता, हमें पता करना चाहिए ना, यानी दिस इज आवर नीड, ये हमारी जरूरत है, ठीक है। ये खाली ये नहीं है कि हमारा मकसद जिंदगी है और जरूरत जो है वो कमाना है, तो कमाने की नॉलेज हासिल करना वो हमारी जरूरत है, और कुरान जो है वो हमारा मकसद है। अल्लाह के बंदे, मकसद को जरूरत बनाओगे तब उसको सीखोगे ना, मकसद को तो पता नहीं क्या समझा हुआ है, क्या मकसद तो है लेकिन जरूरत तो खाना पीना है, और जरूरत तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इस वजह से जो जरूरत है उसके ऊपर तो फिर आपको टाइम लगाना पड़ता है ना। कुरान तो मौलवी साहब भी कहते हैं कि ये जरूरत नहीं है, है? मौलवी साहब भी कहते हैं कि कुरान और दीन जो है ना ये जरूरत नहीं है, ये मकसद है। तो अब मकसद जो है ना ये तो बुलंद चीज होती है ना, तो उसको बुलंदी रखें, बुलंद चीज तो फिर बुलंदी रहती है ना, वहां तक तो आप अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है ना, मकसद बुलंद चीज होती है। तो अब जो है ना वो बुलंद इतना बुलंद हो गया कि अब उधर के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम उसको अप्रोच ही नहीं कर सकते। तो जरूरत है तो जरूरत को तो हम अप्रोच भी कर सकते हैं, और जरूरत के लिए मेहनत भी कर सकते हैं, और जरूरत के लिए जो है वो हमारी मजबूरी भी है, तो इस वजह से माशाल्लाह जरूरत में लगे हुए हैं। और कुरान तो जरूरत ही नहीं है, वो तो मकसद है कुरान की, जरूरत नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि कुरान जो है ना वो मकसद तो है लेकिन अचीवेबल मकसद है, राइट, विद इन आवर रीच है ये कुरान मजीद, और ये हमारी जरूरत भी है, यानी इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, इसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते, इसके बगैर हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, हम अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते, अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं ना कि आप उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें कि जब वो अदजाकुम, क्या है वो आयत, लिमा युहयीकुम, कि जब वो तुम्हें बुलाए उस तरफ जो कि तुम्हें हयात देने वाली चीज है। तो हयात जो है वो हमारी कोई मकसद है या हयात हमारी जरूरत है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए जिंदगी है, राइट। हत्ता के जो 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 इवन जो शरी सजाएं भी होती हैं उनको भी जो है वो जिंदगी फरमाया, जिंदगी। तो जिंदगी को कहें जी जिंदगी मेरी मकसद है और जरूरत मेरा कुछ और है, तो फिर आप बगैर जिंदगी के आप अपनी जरूरत पूरी कर लेंगे? तो भाई मकसद को जरूरत भी समझना है, ये नहीं कि मकसद अलग चीज है और जरूरत अलग चीज है। तो इस वजह से फिर जब इल्म हासिल नहीं किया, ना कुरान का इल्म हासिल किया, ना वही का इल्म हासिल किया, ना इस्तलाहात का इल्म हासिल किया, तो अब जो है वो काफिर मरता है तो उसको रहमतुल्लाह अलैह कह रहे होते हैं, उसको जो है वो शहीद कह रहे होते हैं, उसको RIP कह रहे होते हैं, और समझ रहे होते हैं जी इट्स वेरी गुड, बड़े अच्छे मैनर्स हैं, ये तो बड़े अच्छे मैनरिज्म हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मतलब अपना ख्याल करना चाहिए ना। तो फरमाया कि जो जिस शख्स ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर दे। अब तो हमारी दुआओं से उसको कोई फायदा नहीं होगा, अलबत्ता हमें जरूर नुकसान होगा। जो बवजह इल्तिजाम के मिसले इकरार नसारा के हैं, जो कि फिर आपने गोया के नसारा के साथ एग्री कर लिया। ठीक है, इसी वजह से आज के दौर में एक तो मुसलमान का इल्म ना होने के बराबर बल्कि गलत, ठीक है, गलत इल्म मुसलमान। फिर उसके बाद जो है वो आप नॉन मुस्लिम्स के साथ इतना प्यार मोहब्बत, ठीक है, स्पेशली जो है वो यानी इवन अब तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी नॉन मुस्लिम से ज्यादा मोहब्बत हो रही होती है, मुसलमानों से ज्यादा नफरत हो रही होती है, इवन मुसलमान मुल्कों के अंदर रहते हुए भी जहाँ पे मेजोरिटी जो है वो हम जैसे मुसलमानों की है। और जब बाहर निकलते हैं मुसलमान मुल्कों से बाहर जाके यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हैं, वहां तो और भी ज्यादा मोहब्बत हो जाती है गैर मुस्लिम से। और फिर जब कोई कॉमन कॉज बन जाता है कि किसी इंसानियत के कॉज के लिए या किसी जो है वो इंसाफ के तहरीक के अंदर नॉन मुस्लिम के साथ मिल करके तहरीक चलानी है, तो अब तो ये मोहब्बत जो है वो यानी पता नहीं क्या बन जाती है फिर उसके बाद ये। ठीक है, तो अब जो है वो उस कॉज के लिए नॉन मुस्लिम्स के साथ जो है वो जलसे जुलूस और तहरीकें और जो है वो उसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, एंड देन क्या, हाँ भाई बहुत अच्छे हैं ये लोग, तो ये तो देखो मुसलमान लोग तो बल्कि हमारा हमें सपोर्ट भी नहीं कर रहे, ये लोग तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए, इस हक की आवाज बुलंद करने के लिए, तो गैर मुस्लिम हमें सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर इवन बेटर देन मुस्लिम्स, दे आर बेटर देन मुस्लिम्स। तो भाई बेटर देन मुस्लिम अखलाकी तौर पर अगर हैं भी अकीदे के एतबार से तो नहीं बेटर देन मुस्लिम है ना, लेकिन शैतान फिर वहां पर अकीदे को भी जो है वो कम अहम बना देता है कि भाई अकीदा कोई मसला नहीं, व्हाट इज रॉन्ग इफ दे आर इफ दे बिलीव दैट जीसस इज सन ऑफ गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? ठीक है ना, हम हमारा अपना बस सोच है, उनकी अपनी एक सोच है, लेकिन सब ठीक है, सब ठीक है। तो जब आपने कह दिया सब ठीक है तो फिर तो कुछ भी ठीक ना रहा ना, जब सब ठीक है यानी आप कहें कि एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है ये भी ठीक है, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई ये भी ठीक है, ठीक है एक्स इज इक्वल टू वाई ये भी ठीक है, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई ये भी ठीक है, तो फिर क्या ठीक रहा? तो फिर एक दिन कह रहा है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है ये भी ठीक है, और एक दिन कह रहा है कि अल्लाह का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम है ये भी ठीक है, तो फिर क्या बचा है? दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, अब तो जीरो रह गया ना, फिर उसके बाद अब क्या रह गया? फिर उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, आप अब आप यू आर वर्थ जीरो, फला नुकीमु लहुम यौमल कियामती वजना। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि कयामत के दिन फिर इनकी जो नेकियां भी होंगी ना, हम उनका कोई वजन नहीं करेंगे, यानी क्या मतलब कोई वजन नहीं, यानी जीरो जीरो मिलेगा फिर उसके बाद, क्योंकि ना तो आप जो है वो पॉजिटिव को सही कह रहे हैं ना आप जो है वो नेगेटिव को सही कह रहे हैं, तो फिर तो मतलब ये दोनों को ही सही कह रहे हैं, मतलब यानी आप दोनों को ही सही कह रहे हैं, इस वजह से यूनिवर्स बेसिकली वर्थ जीरो। ठीक है। तो भाई दीन का, अकायद का इल्म हासिल करना ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है जिसके ऊपर लंबे लंबे हम टैक्स देते हैं, लग्जरी आइटम्स के ऊपर नहीं। दिस इज अ नेसेसिटी, ये जरूरत है हमारी। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा क्या, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट इश्यूज ऑफ ईमान आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो म्यूचुअली इंक्लूसिव समझा, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव, सब चलता है भाई, ईमान में सब चलता नहीं है। ठीक है, हाँ ये चलता है कि जी वो हनफी मजहब में जो है वो हाथ नीचे बांधते हैं और शाफी में हाथ ऊपर बांधते हैं और हम्बली में जो है वो हाथ साइड पे बांधते हैं, ये चल सकता है, ईमान में नहीं चल सकता। ईमान में इंक्लूसिवनेस नहीं चल सकती है ना। बाकी बस ईमान बचाएं भाई अपना, कहते हैं दज्जाल का दौर है, उसके लिए इल्म हासिल करना पड़ेगा। आगे फरमाते हैं कि खुलासा ये है कि आखिरत के अजाब का जब तुम्हें खुद भी इकरार है तो ये बतलाओ कि क्या कोई बाप अपने बेटे या महबूब को अजाब भी दिया करता है। ये तफसीरन ये बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि अंडरलाइंड जो है ना वो है तर्जुमा और बाकी ब्रैकेट्स के अंदर ये उसकी एक्सप्लेनेशन और तफसीर है। तो खुलासा ये है कि आखिरत के अजाब का जब तुम्हें खुद भी इकरार है तो ये बताओ कि क्या कोई बाप अपने बेटे या महबूब को अजाब भी दिया करता है। यानी जो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अच्छा फिर तुम पूछो इन लोगों से कि अल्लाह ताला तुम्हें क्यों अजाब देंगे, तो क्यों पूछने को कह रहे हैं अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को, क्यों कह रहे हैं कि इनसे पूछो। उसकी वजह ये कि क्या कोई बाप अपने बेटे महबूब को अजाब भी दिया करता है, इसलिए अपने आप को खुदा की औलाद कहना बातिल है। नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, ये बातिल है, इसकी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारे कहने की। अच्छा, अब इसके ऊपर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी हकीम उल उम्मत, ठीक है, उन्होंने तफसीर लिखी है ना, तो माशाल्लाह अपनी हिकमत और दानाई जो है उसका यहाँ पे फिर माशाल्लाह बेहतरीन इस्तेमाल किया कि मजीद तफसीर में ये लिखा कि अब किसी के जहन में ये बात, ये सवाल पैदा हो सकता है, ये शुबा पैदा हो सकता है। क्या शुबा? कि लिख रहे हैं कि यहाँ ये शुबा नहीं किया जा सकता कि बाज़ औक़ात बाप भी अपनी औलाद की इस्लाह व तरबियत के लिए तादीबन सजा दे देता है। ठीक है, जो अच्छा बाप होता है, मुरब्बी होता है, अदब सिखलाने वाला बाप, तो वो तो अपने बेटे को सजा दे देता है ना। तो सजा होना तो बेटा होने के मुनाफी नहीं है। यानी ये जो आर्ग्यूमेंट आप पेश कर रहे हैं कि अगर तुम बेटे हो अल्लाह ताला के, या अगर तुम अल्लाह ताला के बहुत ही मुकर्रब और स्पेशल लोग हो तो फिर तुम्हें क्यों सजा मिलेगी, तो इसके ऊपर आगे से काउंटर क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई बाप भी तो बेटों को सजा दे देता है ना, तो खाली सजा मिलना तो बेटा होने के मुनाफी नहीं है। उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है, उसका जवाब क्या है कि बाप की सजा तादीब के लिए होती है, अदब सिखाने के लिए, ताकि वो आइंदा ऐसा काम करे। ठीक है, बाप की सजा बेटे को इस मकसद से होती है कि वो आइंदा सीधा बंदा बन जाए, ठीक है, बंदे का पुत्र बन जाए, सही है। और आखिरत में तादीब का कोई मकाम ही नहीं है, यानी आखिरत जो है ये अदब सिखलाने वाली जगह नहीं है, सही है, क्योंकि वो दारुल अमल नहीं है बल्कि दारुल जजा है। भाई अदब सीखना ये तो एक अमल है ना, अब आप अदब सीखेंगे फिर उसके बाद आइंदा जिंदगी आप अदब से गुजारेंगे, तो भाई ये तो अमल वाली जगह पे ये चीजें होती हैं, और आखिरत तो अमल की जगह ही नहीं है, अमल का घर ही नहीं है, वो तो जजा का और सजा का घर है। दारुल जजा मतलब या तो अवार्ड, रिवॉर्ड या पनिशमेंट, ठीक है, वहां आगे कोई काम करने या किसी काम से रोकने का कोई एहतमाल ही नहीं है जिसको तादीब कहा जाए। इसलिए वहां जो सजा होगी वो खालिस सजा और ताजीब ही हो सकती, वो खालिसतन सजा और ताजीब यानी अजाब देना ही हो सकता है। ठीक है, जो औलाद या महबूब होने के कतअन मनाफी है, ठीक है, वहां पर तादीब के लिए सजा नहीं दी जाएगी जो कि बाप अपने बेटे को देता है, बल्कि वहां पे ताजीब के लिए सजा दी जाएगी जो कि सिर्फ परवरदिगार अपने बंदे को देता, परवरदिगार अपने बंदे को देता है कयामत के दिन यानी आखिरत के दौर के अंदर। इसलिए मालूम हुआ कि तुम्हारी कोई खसूसियत अल्लाह के यहाँ नहीं है। ईमान वालों को जो वहां सजा होगी ना वो तादीब के लिए नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर एक और काउंटर क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा हमने तो सुना था कि ईमान वाले भी जो है ना वो भी जहन्नुम में जाएंगे, सबसे ऊपर वाले लेवल पर होंगे और बिलाखिर अपने ईमान की वजह से वो वहां से निकाल दिए जाएंगे और जो है वो फिर जन्नत में डाल दिए जाएंगे। तो उनको फिर तादीबन सजा नहीं हो रही ईमान वालों को, ठीक है? अगर आप कहते हैं कि जी वहां पे सजा जो है वो तादीबन नहीं होगी, तो फिर ईमान वालों को क्यों सजा हो रही है? तो उसका जवाब बिल्कुल यही है जो आपने लिखा, फॉर क्लिनजिंग, यानी वो तज़किये के लिए सजा हो रही है, वो तादीब के लिए सजा नहीं हो रही, वो तज़किये के लिए सजा हो रही है, ठीक है? ताकि वो जन्नत में जाने के लिए साफ सुथरे हो जाए बस। क्योंकि ईमान तो उनका था, नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने इनकार नहीं किया, ना आपकी किसी बात का इनकार किया, ना आपकी पर्सनैलिटी आपकी जात का इनकार किया, ना आपकी किसी बात का इनकार किया, ठीक है? कि नहीं ऐसा नहीं है, जैसे उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इसका क्या मतलब होता है कि बात का इनकार कर रहे हैं। और जात का इनकार का मतलब कि नहीं वो थे ही नहीं अल्लाह के नबी, ये जात का इनकार हुआ। तो जात का इनकार इज इक्वल टू बात का इनकार, बात का इनकार इज इक्वल टू जात का इनकार, क्योंकि जो झूठ बोलता है अल्लाह के ऊपर वो अल्लाह का नबी हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने ये कह दिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, नाउज़ु बिल्लाह, कि जो बात हक नहीं थी वो बोल दी, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप नबी अलैहिस्सलाम की बात का खाली इनकार नहीं कर रहे, बल्कि जात का भी इनकार कर रहे हैं कि वो अल्लाह के रसूल थे ही। कुदरतनाथ सुबह खावादीन की क्लास में बिल्कुल यही बात हो रही थी। तो बात का इनकार जात का इनकार है, ये नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे ही नहीं, ठीक है? तो बहरहाल, तो चूंकि मुसलमान जिसका ईमान पर खात्मा हो, ठीक है, उसने नबी अलैहिस्सलाम की ना बात का इनकार किया ना नबी अलैहिस्सलाम की जात का इनकार किया, तो इस वजह से अब उसकी क्लेंसिंग हो रही है ताकि वो जन्नत में जाने के काबिल हो सके। तो वो तादीबन सजा नहीं मिल रही होगी, ठीक है? अच्छा, इन्होंने कुछ और लिखा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ठीक है, ये वाली आयत भी यहाँ पे फिट की जा सकती है कि ईमान वाले जो है ना वो तो अल्लाह ताला की यहाँ इज्जत वाला मुकाम, और अतकाकुम, अतकाकुम का लफ्ज अगरचे के तर्जुमा इसका बनता है तकवा, जिसमें तुम जो तुम्हें ज्यादा मुत्तकी है वो अल्लाह ताला की यहाँ इज्जत वाला मुकाम रखता है, लेकिन तकवा का सबसे अदना दर्जा क्या है? ईमान। तो हर ईमान वाला जो है ना वो तकवा के किसी ना किसी दर्जे के ऊपर फाइज होता है, लेकिन जो ज्यादा मुत्तकी होता है वो ज्यादा ऊपर के दर्जे में फायज होता है, और अल्लाह ताला के यहाँ मुत्तकियों की इज्जत होती है। बहरहाल, तो लेकिन वहां पे थोड़ी सी डिफरेंट बात हो रही है, तो ये वाली आयत जो है वो जरा बहुत ही ट्विस्ट करके आपको यहाँ पे फिट करनी पड़ेगी। एनीवे, दूसरा एक मैसेज आया हुआ है कि कैन ए पेरेंट पनिश हिज चाइल्ड फॉर ताजीब, अजाब देने के लिए, कैन ए पेरेंट पनिश हिज चाइल्ड फॉर ताजीब, अजाब देने के लिए। पता नहीं फिर वो पेरेंट कहलाने के काबिल रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर वो अजाब देने के लिए बच्चे को जो है वो पनिश कर रहा है, तो फिर पता नहीं वो पेरेंट है भी कि नहीं है। लेकिन बच्चे को वैसे लगता है ऐसे ही है ना, जो शरीर बच्चे होते हैं ना वो खुद जो है वो हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनको उधर से ऊपर से पिटाई लगती है ना, तो फिर वो थोड़ा सा पढ़ लिख लें ना तो फिर अल्लामा बन जाते हैं ना, फिर थोड़ा सा दो चार लफ्ज पढ़ लें तो फिर वो अल्लामा समझना शुरू आता है अपने आपको, तो फिर वो अपने अब्बू को बोलेंगे ये वाली क्लास सुनने के बाद, नहीं, अब्बू आप मुझे तादीब के लिए कुछ थोड़ी पिटाई कर रहे हैं, आप जो है तादीब के लिए पिटाई कर रहे हैं, तो ये कैसी बात हो गई? आप मुझे भाई आपको आप क्यों बोल रहे हैं अपने अब्बू को कि आप तादीब के लिए पिटाई कर रहे हैं? वो तादीब के लिए ही पिटाई कर रहे हैं, ठीक है ना? आप इतने अल्लामा बनने की खमखई कोशिश हर वक्त ना किया करें, ठीक है? तो बहरहाल, अपनी तरफ से खामखा जो है ना वो तादीब के लिए कर रहे हैं भाई, फिर या तो फिर वो मेंटली डिसेबल्ड किस्म का बंदा होगा, जैसे कि अमेरिका, अमेरिका के अंदर वैसे ही पहले भी बहुत ज्यादा था, पूरी दुनिया के अंदर ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन उस मुआशरे में तो हमसे 100 गुना आगे ही हमेशा रहे हैं ना वो। तो इस वजह से पेरेंट्स के कितने अनगिनत वाकयात जो है वो आ रहे हैं कि जिसके अंदर मार दिया, जला दिया औलाद को, औलाद ने माँ बाप को जला दिया, औलाद ने माँ बाप को मार दिया, माँ बाप ने औलाद को पता नहीं क्या कर दिया। ये भाई मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं आपके स्क्रीन की बरकतों की वजह से, चार चार साल के बच्चा, अभी कल ही मैंने एक न्यूज पढ़ी, ब्रिटेन के स्कूल्स के अंदर जो है ना, वो चार चार साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ आ रहे हैं एंड दे आर रैकिंग हैवक इन द स्कूल। ठीक है, यानी इतना यानी बुलियंग भी हो रही है और नाउज बिल्डअप, बेहयाई की भी हरकतें हो रही हैं 4 5 साल के बच्चे। 13 साल के बच्चों के तो कितने केसेस हैं जो कि शूट ही कर देते हैं ना अपने को स्टूडेंट को। ये ब्रिटेन के स्कूल्स की जो है वो ज्यादा आ रही है आजकल। ठीक है, छुरी मार दिया, स्टैबिंग के तो इतने इवेंट्स हैं, टीचर को स्टैब कर देना, टीचर को जो है वो मार देना, टीचर को जो है वो फलाना कर देना, और साथ वाले स्कूल के बच्चों को भी। ठीक है, और फिर ये कहते हैं कि जी हर बच्चे को स्कूल जाना बहुत जरूरी है, स्कूल नहीं जाएगा तो फिर इंसान कैसे बनेगा। भाई हमें ऐसा इंसान नहीं चाहिए यार, हमें ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो कि इस माहौल के अंदर या तो जिंदा रहना पड़े या ये किस माहौल का हिस्सा बनकर के खुद ही स्टैबिंग शुरू कर दे, खुद ही जो है वो गोलियां मारना शुरू कर दे दूसरे बच्चों को या टीचर्स को। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं इनके अपने अपने, हमने को थोड़ी स्टैटिस्टिक्स बनाए हैं इनके स्कूलों के, इनके अपने बनाए हुए स्टैटिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, ये चीजें भी थोड़ा सा ना अपनी स्टडी में रखनी चाहिए ताकि हम इतना उनकी कामयाबियों के ऊपर इतना फरेफ्ता हुए फिरते हैं हर वक्त, हमें उनके असल चेहरा भी नजर आता रहे। हमारे मौलवी लोग हैं ना, वो हमारे सामने यानी अजायब ना बने रहे कि जब वो हमें समझाते हैं कि भाई उनकी इत्तबा ना करो, उनके पीछे पीछे चलने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हारा भी यही हशर होगा जो उनका हशर हो चुका है। ठीक है, तो हमें इन चीजों के बारे में थोड़ा नजरें खोल के रखनी
अभी तो
चाहिए।
गर्मी नहीं है तो पीते भी नहीं।
ठीक है, अच्छा आखिरी बस ये रह गया, तो टाइम कितना रह गया, टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन बस ये पढ़ लेते हैं ताकि खुलासा तफसील मुकम्मल हो जाए कि बल्कि तुम भी मिन जुमला दूसरे मखलूकात के एक मामूली आदमी हो। ठीक है, तो तुम भी जुमला दूसरे मखलूकात के एक मामूली आदमी हो, अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे बख्शेंगे, जिसको चाहेंगे सजा देंगे, और अल्लाह ही की है सब हुकूमत आसमानों में भी और जमीन में भी और जो कुछ उनके दरमियान उनमें भी, और अल्लाह ही की तरफ सबको लौट कर जाना है, इसके सिवा और कोई पनाह नहीं है, अल्लाह ही की तरफ जाना है। भाग के कहीं नहीं जा सकते अल्लाह ताला से, ना दुनिया में भाग सकते हो ना उस आखिरत में भाग सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इन आयात के खुलासा तफसीर को पढ़ के हमने मुकम्मल कर लिया। रमजान मुबारक की महीने के अंदर इंशाअल्लाह हम सूरह मायदा की तफसीर आगे नहीं चलाएंगे, बल्कि अब यहाँ से आगे मार्ग मसाइल रमजान मुबारक के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने मैसेज देख लिया होगा ग्रुप्स के ऊपर कि रमजान मुबारक में सूरह अनआम की जो तफसीर खवातीन की क्लास में बाकी साल में चल रही है, तो वो हम रमजान मुबारक में रोजाना के हिसाब से जो क्लास हमारी होगी दरस कुरान की, उसमें सूरह अनआम की तफसीर आगे चलाएंगे। वो भी अल्लाह का कुरान ही है, ये भी अल्लाह का कुरान ही है, तो इंशाल्लाह सूरह अनाम की तफसीर से भी आपको उतना ही फायदा होगा जितना कि सूरह मायदा की तफसीर पढ़ने से हो रहा है। इंशाल्लाह जो हो रहा है अल्लाह से उम्मीद है कि हम सबको फायदा होगा, पढ़ाने वाले को उम्मीद है कि ज्यादा फायदा होगा, पढ़ने वालों को भी बहुत फायदा होगा। तो वो फिर हम 1:30 बजे टाइम है कि ऐसे का, और कतर कुवैत वगैरह का जो टाइम जोन एक ही है, और उसके हिसाब से फिर दूसरे मुल्कों का जो टाइम बनता होगा तो उसमें फिर रोजाना के हिसाब से इंशाल्लाह रमजान मुबारक की तरफ से दरस कुरान क्लास हुआ करेगी। ठीक है, आपको भी उसकी दावत है, और आगे अपने जाने वालों को भी बताएं तो वो उम्मीद है कि कुछ बात सीखेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो आपके लिए भी वो सदका जारिया बना देंगे, सबके लिए अल्लाह ताला बनाए और रमजान मुबारक को हमारी जिंदगी का बेहतरीन रमजान मुबारक बनाए से। की दुआ है, अलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।